सतनाम श्री वाहे गुरु। हम अब गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह भरम पे भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। इकर दास भाट कीरत की, गुर राम दास राखो सरनाई। इकर दास भाट कीरत की, गुर राम दास राखो सरनाई। सो कहो तल गुर से भी है, एनिस सहज सवाए। दर्शन परसिय गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिय गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। सोरठ महला पंजवां, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा। रहाओ तुम सब साजे, साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवाना। तुम करो भला, हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जिए जंत सब जाचे। कहो नानक हम एह हवाला, राख संतन के पाछे। तुम निधान अटल सुल्तान, जिए जंत सब जाचे। कहो नानक हम एह हवाला, राख संतन के पाछे। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। परम सत्कार योग साध संघ जियो, ब्रह्मन दिया बिरतियां एकागर करो जी। ते गज की कहो सतनाम श्री वाहे गुरु। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज राग सोरठ विच इस शब्द उच्चारण कर रहे हैं। सोरठ राग की प्रकृति जड़ी है, ये भक्ति भाव विच है, गंभीर ते वैराग में ही है, सो भरती रस संपूर्ण है। और जे गान दा वक्त है, एक पहर गए रात, मतलब 6 to 9 बजे, एक पहर ते 9 बजे के बाद 10-11 बजे के आसपास इसनों गाया जाता है। पर शरद ऋतु विच किसी वक्त भी गा सकते हो, जहाँ के बसंत राग उस सही सोरठ राग शरद ऋतु का राग है। सो साहेब कह रहे हैं कि हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। सच्चे पातशाह जी महाराज सानू सिखा रहे हैं कि जे किस तरह अपने आप नू एक तुझ इंसान समझना है, किसना अपने अहंकार उतजना है। क्योंकि अगर मैं राहव की पंक्ति पढ़ा तो वह कहते हैं कि माधव हम ऐसे तू ऐसा, ये प्रभु ये मायापति परमेश्वर, हाँ असी तो ऐसे ही हैं और तू ऐसा है। कैसा है? हम पापी तुम पाप खंडन नी को ठाकर देसा, असी पापी हैं तू पाप खंडन वाला है, नी को ठाकर देसा यह तेरा देश है प्रभु, बहुत सोना है। और तेरा देश की है, तेरा देश है सात संगत, क्योंकि प्रभु का जरा कर है सात संगत है, सात संगत है जिससे कि असं अपने पाप दूर करते हैं, अपने दुख दूर करते हैं। ऐसी जगह है जिथे के पाप नहीं आते। सो हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, प्रभु असी मैले हाँ। मैले किस तरह हाँ? विकारां दी मैल नाल साड़ी अंतरात्मा भरी हुई है, साड़ी अंतरात्मा विकारां दे मैल नाल भरी हुई है, और तुसी उसनु उज्जल करन वाले हो, तुसी ही उज्जल करना, तुसी साफ करना है। हम निर्गुण तू दाता, असी गुण ही ना हाँ, और तू दाता है, दाता देन वाला है। सो श्री गुरु महाराज ने कितने कितने मैल दूर की थी। तन तन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पूर्व नजदीक है। सो कुछ उदाहरण उन्होंने जीवन में दे रहा था। उन्होंने गुरु साहब लाहौर गए और उत्थे दुनी चांदी हवेली से बाहर बैठी हैं, उत्थे उच्चे उच्चे झंडे लगे हुए हैं, सात आठ झंडे लगे हैं उत्थे, और दुनी चंद मिलन आंदा है गुरु महाराज नूं। तो गुरु साहब पूछते हैं कि झंडिया का की महत्व है? तो कहते हैं जी एक झंडा का मतलब है एक करोड़। मैंने दुनी चंद करोड़िया कहते हैं कि मैं अठ करोड़ का मालिक हाँ, उस वक्त अठ करोड़ बहुत ज्यादा करोड़ जी, अठ करोड़ का मालिक हाँ। अच्छा मैं इतना ईमानदार हाँ कि जब लोग तीर्थ स्थान से जाते हैं या हज करन जाते हैं, अपनी चीजा मेरे को छड़ जाते हैं, जाके वापस ले जाते हैं। करते करते बहुत देर अपने गुण गाँदा आया तो गुरु साहब ने कहा अच्छा ठीक है भाई, ऐसा साधु आदमी हाँ, यह सुई ले लै, यह सुई रख दे स्वर्ग जाके मैं दे दी, तू स्वर्ग जाना है फिर अच्छे काम करना है उसे मैं दे दी, तो मेरे काम आएंगे, इस सीन दे काम आंदा है। सो ठीक है जी, वो शरीफ आदमी उठिया कर गया, अपनी बीवी नूं कहंदा जी ये संभाल लै, संतां दा कहना है कि उपर जाके मैं देना है। सो वो थोड़ी ज्ञानवान सी, वो कहंदे इसा है जी सेठ जी के ऊपर तो एक पैसा भी नहीं जाएगा, सुई किस तरह जाएगी? वो वापस आया कहंदा महाराज ये पॉसिबल ही नहीं है कि सुई ऊपर ले जावा, तो उनके भी झंडे लगाए तू, आठ करोड़ ऊपर किस तरह जान गए तेरे? तो कहने के मुताबिक गुरु साहब ने जो सुई है वो जो गुब्बारा फुले अटकाती तो उसका गुब्बारा खत्म हो गया, उसका अहंकार टूट गया। जिस तरह के कहना है कि दुनी चंद नू दीन नाल मिला देता, दुनी नू दीन नाल मिला देता, दीन है धर्म, दुनी चंद नू धर्म नाल मिला देता। इस तरीके दे नाल उसने अपना जो तन से लोड़वंद लोगों नू दिता और स्वच्छ जीवन बिताने लगा। क्योंकि गुरु साहब तो हर जगह कहते ना किरत करो, ईमानदारी की किरत करो, नाम जपो तो वंड छको। तो आवाज आ रही ना सतन मेरी? इस तरीके से गुरु साहब ने उसकी होमे दूर की थी। इस तरह बहुत सारे उदाहरण है ना, वली कंधारी है, सज्जन ठग है। इस तरीके दे नाल होर बहुत उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण तो दे रहा मैं वली कंधारी दा। साहब पहुंचे हसन अब्दाल नाल सी मर्दाना, उसने लगी प्यास। ऊपर पहाड़ी ते एक पीर आंदा सी वली कंधारी, और वली कंधारी कोलों एक सोमा सी पानी दा, चश्मा पानी दा सी उस कोलों। उन्हें कहा पानी पी लै जाके। उत्थे उसने पानी मंगया जाके, तो वली कंधारी कहता मेरे को पानी नहीं है। थले आया तो क्या जी गुरु महाराज, उतना पानी देने को जा ही नहीं है। तो गुरु साहब ने अपने कौतक के नाल जरा चश्मा सी अपने को ले आए। सो चश्मा पानी के नीचे आ गया। इस वली कंधारी ने चढ़िया गुस्सा, उसने जी पहाड़ी से उसे खोलों तो थले छुट्टी होना वाल। तो गुरु साहब ने हाथ दे के उस पहाड़ी ने रोक दिता, जिथे एक पंजा लग गया उन्होंने, जो कि अजकल पंजा साहब है, हसन अब्दाल पंजा साहब है, जिथे कि एक स्प्रिंग है, चश्मा है, जो कि पानी आता है। वली कंधारी नीचे आया गुस्से में। तो गुरु साहब ने कहा देखो जो प्रकृति दी चीज़ा हैं ना, सब्जियां सांझी हैं, तेरे कलियां नहीं हैं। कर दे कर दे उसने अपने वाल कर लिया, उसका अहंकार दूर किया। गुरु साहब सैदपुर जाते हैं, जिसने अजकल एमनाबाद कहते हैं, जिथे बाबर ने सब तो पहले लड़ाई जड़ी सी। सैदपुर सीधा एक तरखान के घर जाते हैं। तरखान को पता ही नहीं कौन है नो, सत करदार जी गूंज करते हैं। तो बाहर आता है तो पता लगता कि ओ गुरु नानक हैं, क्योंकि तद तक गुरु नानक साहब की ख्याति काफ़ी उच्ची हो चुकी सी। उन्होंने नानक तपा या फिर नानक शाह फकीर कहा जाता है। हिंदू तपा कहते थे, मुसलमान फकीर कहते थे, नानक शाह फकीर। गुरु साहब उठे रहे काफ़ी वक्त, सत्संग चलता रहा। कुछ दिन बाद वापस आने लगे तो वो जरा उत्थे रहा भाई लालो, जरा कि तरखान सी, उसने कहा महाराज कुछ दिन होर रह जाओ। सुर की अर्थ सुन के कुछ और रह पे। इसी दौरान उतों का एक जरा सरकारी कर्मचारी सी मलक पागो, उसके घर से कोई समागम, उसके पिता की सी बरसी। तो उसने सदा भेजा सारे संतान, इन्होंने ही भेज लिया, क्योंकि शिकायत पहुँच चुकी सन उस को कि एक खतरी है जरा कि तरखान के कोल रहा है, ऋषि जात के कोल रहा है, उस नाल एक डूम साथी, एक डूम है, मरदाना डूम है। गुरु साहब गए नहीं उसे। हूँ वाली कंधारी से तहसीलदार चढ़िया गुस्सा, उसने बुला भेजा, क्योंकि लोगों ने शिकायत की थी उसने, जरा क्या कि तू तो एक चीज की है तेरे सामने। सो गुरु साहब ने बुला भेजा, वो पहुंचे उसे। गुरु साहब ने कहा दसो मेरा गुनाह की है। तो गुनाह तेरा ये है, सारे ब्राह्मण आके भोजन करके तनु की तकलीफ है। तो उन्होंने कहा मैंने कोई तकलीफ नहीं है, मैं तकलीफ है तेरी किरत के नाल, तेरी किरत की है। गरीबों का पैसा चूस चूस के तो पैसे कमाता है, उस नाल तो ब्रह्म भोज करता है, ये लोग खान के तकलीफ उन्होंने भी होएगी। जब तो ना मनिया तो उन्हें कहा ठीक है, फिर अपने जो पूरे हैं ना तेरे को मंगवा भेज अपने घरों। तो लालो ने क्या पे अपने कोदरे की रोटी लेके आया, अपने उतो कोदरे की रोटी के साग वो उत्थे खाते सन। वह कोदरे की रोटी ले आया तो इन्होंने पूड़े मंगवा ले, तो सब के सामने गुरु साहब ने एक हाथ पूड़े एक हाथ कोदरे की रोटी हथ सीधे करके निचोड़ दिता। भाई लालू की कोदरी की रोटी उसे दूध टप गया सिर, तो दूसरे पास खून। हूँ मलक पाको शिमरता तो बहुत होया, लेकिन उसे मन एक बदला लैन की भावना आ गई कि मैं तो मेरी तो बेइज्जती हो गई। इसी दौरान तो जरा हाकम सी, जरा नवाब सी, उसे बेटा हो गया बीमार, कोई दवाई काम ना करे। इसने क्या महाराज ऐसा भाई साहब जी कि अगर दवाई काम ना करे तो दुआ काम कर दी, संतान की दुआ काम कर दी है। कहो तो कुछ फाड़ के ले आवा। तो उसका इशारा जी गुरु नानक देव जी वाल, सब संतान ने पकड़ के लाया तो गुरु नानक साहब भी सामने चल तो बिठाता उन्होंने। तो हाकिम आया कहते संत जनों साई लोगों मेरा पुत्र बीमार है दुआ करो। तो गुरु साहब ने कहा भाई देख तू इतों का नवाब तू खुद दस कि किकर च कभी अंगूर उगते हैं, किकर के पेड़ से अंगूर उगते हैं कभी नहीं जी। तो फिर तू जबर जोर बिचो खैर किस तरह मंग रहे हैं। मैंने जोर किसने किया महाराज कहते तेरे पटवारी ने जबरदस्ती सबन पकड़ के लिया है जोर भर दिता है खैर कितों निकलेगी। तो हाके ने माफी मंगी। गुरु साहब ने कहा ठीक है भी भाई लालो अपने घरों एक कोदरी की रोटी लैके आ। और रोटी जी सी वह बच्चे के मुँह न छुआई गई तो बच्चा ठीक हो गया। इतिहास है मैं नहीं कह रहा। सो तद तक मलक भागो भी नीचे आ चुका सी, माफी मंगी उसने। गुरु साहब ने कहा देख जबर जोर नहीं ईमानदारी की किरत करो नाम जपो तो वंड छको। इस तरीके बहुत और प्रमाण है तुम होर अगे आके वक्त होया दसता रहूँगा। सो हम मैले ये प्रभु असी बहुत मैले हाँ विकारां दे परे होए हाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा वाशना है सब इन्हां दे परे होए हाँ असी जिथों उज्जल करन वाले असी गंध दे परे होए हाँ असी विकारां दे विच खचित हाँ प्रभु फिर सानू उज्जल करना है। इस जगह से गुरु साहब सब दस रहे हैं कि मनुख तेरी हैसियत की है। हैसियत तो प्रभु की है, तू तो गंदा मैला है तू प्रभु ही उज्जल है। सानू दस रहे हैं कि साड़ी हैसियत कुछ नहीं है। अहंकार का नाश करना हौमे का नाश करना ईगो का नाश करना तो निम्रता सिखा रहे हैं सानू कि हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता है। प्रभु असि निर्गुण हाँ गुण कोई नहीं है तो तू दाता है तू देन वाला है। हम मूर्ख तू चतुर सियाने हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता असि मूर्ख अज्ञानी हाँ तुम चतुर सियाने। इस जगह से गुरु साहब दर्शा रहे हैं कि मनुख अपनी हैसियत पहचान ये गुरमत का सिद्धांत है। इस शब्द द्वारा गुरु साहब गुरमत का सिद्धांत सिखा रहे हैं सानू कि निम्रता धारण करनी तो हौमे का नाश करना है ईगो का नाश करना है। असि कुछ नहीं हाँ असि बिल्कुल नादान हैं। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तो सर्व कला का ज्ञाता है प्रभु तू सर्व गुण संपन्न है तू सर्व कला का ज्ञाता सब कलाओं तेरी बिच हैं। सो गुरु साहब दर्शा रहे हैं कि मनुख मान जा तू कि उसकी हैसियत बहुत उच्ची है और सर्व कला का ज्ञाता है। माधो हम ऐसे तू ऐसे प्रभु ऐसे ऐसे ही हाँ हम पापी तुम पाप खंडन ऐसी पापी हाँ उसी पाप खंडन हो नीको ठाकुर देसन। प्रभु तू पहचानदा है कि असी पापी हाँ फिर भी तेरी मुढ़ कदीमी तेरी आदत है तू माफ करने वाला है तो हम माफ ही करता रहता है तो सर्व कला का ज्ञाता है हम माफ करता है। हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देस तेरा जरा देश है प्रभु तेरा जरा देश है बहुत खूबसूरत है नीको है बहुत सुंदर है। इतने गुरु साहब कह रहे हैं कि तेरा देश जड़ा है सचखंड जड़ा है वो सात संगत ही है नीको ठाकुर देसा रहाओ तुम साजे तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा तुम सब साजे, प्रभु तु सबनों ही साजिया है, धन्यवाजिया है। तु सानू बनाया है, सानू अनेक गुणा नाल संपन्न किया है, अनेक सुखा नाल संपन्न किया है। जीव पिंड दे प्राणम, सानू जीवन दिता है, पिंड दिता है ते प्राण दिते हैं। जीव आत्मा, पिंड शरीर ते प्राण, जीवन शक्ति साड़ी सांस। ये प्रभु तू ही साड़ा रचनहार है, तू साड़ा तू बनाने वाले तुसी खुद ही हो। तुम सब साजे साज निवाजे, जीव पिंड दे प्राणा, निर्गुण आ रहे गुण नहीं कोई, निर्गुण आ रहे असी गुणहीन हाँ, गुण नहीं कोई, तुम दान दे मेहरबाना। गुरु साहब कह रहे हैं कि देख सू तुम सू आत्मा दिती है, देह दिता है, सांस दिते हैं, लेकिन अगे की है? कहते सू मेहरबान कर, सा मेहर करो साढ़े ते। इस जगह पर गुरु साहब कह रहे हैं ये मुक्ति की तरफ इशारा है कि मुक्ति के वास्ते जिन्हें मर्जी गुण दे देन सानू प्रभु, असी मुक्ति के वास्ते अंकुश प्रभु का है, सर्व गुण संपन्न हो जाइए, लेकिन जरा मुक्ति जी है वह प्रभु ही देगा। प्रभु साढ़े मेहरबान होएगा तद ही मुक्ति मिलेगी। ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत के मुताबक जो सनातन धर्म का कर्म सिद्धांत है वह है जिसना करोगे उसना फरोगे, करते रहो पढ़ते रहो, करते रहो पढ़ते रहो। कर्म तीन किस्म के हैं, यह क्रियावान कर्म जो कर्म असी कर रहे हैं, संचित जेड़े कर्म असी बराबर नहीं करते, जे कर्मा का असी समाधान नहीं करते वह कट्ठे हो जाने, कहते संचित कर्म। इन्हां विचों कुछ कर्म प्रभु चुके साढ़े अगले जन्म में पा देता है, वो साढ़े बन जाती है साढ़े प्रलब्ध, जिसमें असं कहने साढ़े साढ़े साड़ा ये किस्मत है। ये जी प्रलब्ध है, संचित कर्म विचों कुछ कर्म प्रभु सानू दे देता है, असी उन्हां कर्मों का समाधान करना है, ते नाल ये भी कोशिश करनी कि बुरा काम ना करिए। अगर असी गलत काम करांगे तो प्रभु साढ़े कोल कोसों दूर हो जाएगा। कर्म चंगे ही करने हैं, लेकिन इत्थे प्रभु का अंकुश है कि असी अरदास का महत्व की है, अरदास क्यों करते हैं? असी अरदास करते हैं कि प्रभु सानू मुक्ति दे, साढ़े जे अवगुण हैं नाश उन्होंने उन्हों का समाधान कर, गलतियां माफ कर सकें। यह अरदास का मत ताकि सानू इस जीवन विच मुक्ति प्राप्त हो सके। जीवन का उद्देश्य की है? जीवन का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना। अगर तुम सनातन धर्म के मुताबक जाओ, जिस तरह करोगे भरोगे, और संचित कर्म भरते जाते हैं भरते जाते हैं, जब तक तुम महान भक्त ना बन जाओ, तपी ना हो जाओ, आसना करते रहो, तद तक वो जो अवगुण हैं जो संचित कर्म दूर नहीं हो सकते, कि आम इंसान दे वो कर्म दूर नहीं हो सकते हैं। संचित कर्म बदले जाएंगे, तुम 84 लाख जीवन घूमते ही जाओगे, लेकिन अगर प्रभु का अंकश हो जाए, अगर प्रभु साढ़े से खुश हो जाए, साढ़े कर्मा करके मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गुरु साहब ने जीवन मुक्ति का उद्देश्य दिता सानू कि जीवन मुक्ति, इस जीवन दे विच ही मुक्ति लैनी है। वो किस तरह करना है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारां दा नाश करके सत संतोख दया धर्म परोपकार तरफ जाओ, तो फिर तुहानू सहज अवस्था मिल जाती है, आनंद की प्राप्ति होती है। यही संत हैं। ये संत की हैं? संत हैं जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, सानू अगों रस्ता दिखाते हैं। सो निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, तुम दान दो मेहरबाना। ये प्रभु सानू दान दो, मुक्ति का दान दो, मुक्ति का रस्ता दिखाओ। तुम करो भला, हम भलो ना जाने। तुसा भलाई करते हो साढ़े वास्ते, ਸਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਜਦ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਹਾਂ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਨ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਦਿਆਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਗਏ, ਢਾਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਬ੍ਰਥ ਹੈ, ਸਦਾ ਬ੍ਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਭੂਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭੂਮੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚ ਖਾਓਗੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਭੂਮੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭੂਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਭੂਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਗੇ। ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਹ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਹਰ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਭੂਮੀਆਂ ਛੁਪਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਰਾਤੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹਿੱਸਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ ਭਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਭਰੇਗਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੇਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਭਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਤ ਛੱਡ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਸੱਚ ਸੋਚੀ, ਸੱਚ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, नमक सीधा खा लें तो फिर उसका बुरा ना करें, नमक हलाल करें हराम ना करें, ठीक है जी। को नमक खाऊंगा किसी का, कहते इतना अमीर आदमी है तो फिर गरीब पार ना करें, दया करें दया, गरीब मार ना करें, तो करी तो ना करवाए तो ना देखें, ठीक है जी। ये क्या है, गुरु साहब चले गए, हूं फोमिया बैठा कर की करा, हर काम अधर्म तो होएगा ही होएगा। तो करते करते सोचते सोचते कुछ दिन बाद, क्योंकि उसे खून में सी चोरी है, क्या ठीक है राजे से कर चोरी कर दें, इतना अमीर है राजा, उसको तो कमी नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, भाई आखिरी चोरी करदा मैं ताकि अपना मन ठीक कर लवा। चला गया उसे सज तज के अच्छे कपड़े पा के सामने गया, उसे चौकीदार से ने कहा जी हाँ अंदर जाना है, कौन हो तुसी, छूटता बोल नहीं सकता, मैं चोर हाँ, मुझे पहरेदार सी चौबदार से हिल गया, कहने सोने कपड़े पा के कहता चोर हाँ, कहते ये ना होवे के राजे का रिश्तेदार ना हो या दोस्त ना होवे, मेरी तो नौकरी चली जाएगी कल, तो हाँ जाओ चले गया, चला गया अंदर। हूँ उस सुविधा स्थान जो चोरी करना पता लगता है कि किसी जगह तन पे है, सीधा उतर गया। रात का वेला सी, उसने अपनी गठड़ी बनाई ज्ञानियां दी, उठ रहे सामने एक और सोने की चीज नजर आ गई, खूबसूरत सोने की नजर, ये भी चुक लेना, चुकया था वह ढक्कन हिल गया, कुछ पिया जी समान भी उसने हत्या किया तो उसे चूरन चूर चुक लिया, ठीक है भाई चूरन तो नमक है, वे वापस रख दो, गठड़ी वापस रखती, बाहर आ गया खाली हाथ, चौबदार भी खुशी खाली हाथ बाहर गया। अगले दिन सवेरे राजा उठा, देखा भी पोटली पड़ी पी है सब्जी, जिसे चूरन पे ऐसी हिलया पे, बुलाया पहरेदारों, पहली दफा जिंदगी जिस तरह हो रहा जो राजा के घर को चोर आ गया, सब्जी पेशी हो गई, हम पहरेदार तो पता होता सब्जी चोर कैसे कैसे गए, हम गरीब पकड़ लोग पकड़े मारना शुरू करता, भूमि अपने घर जा चुका सी, उसे पता लगा उसे गरीब मार हो रही है, उठिया गरीब मार नहीं करनी, ना देखनी ना सुननी है, क्या उसे कहना राजा, राजा सुने नहीं उसकी गल, होता देख रहे सी किस तरह एक गरीबान ठीक किसा जा रहा है, तो मेरी गल तो सुन लो महाराज, कह की है जी थोड़ा गुनाहगार मैं हाँ, और तू तो भूमिया है, और तुझ मैं भूमिया ही हाँ जी, तू चोरी किस तरह कर सकता है, जी मैं ही चोरी की थी। उसे पूरी गाथा सुनाई कि महान संत जी आए सन, महापुरुष आए सन, उन्होंने कैसे कि सच बोली, नमक खा के हराम ना करें, गरीब पान न सही, गरीब पानी सह सकिया। राजा कहता ठीक है अच्छे गुण हैं, पर तो गुनाह तो कीता है ना, तो सजा देनी है को देव जी। हम बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने कहा ठीक है तुम हूं कोई सजा नहीं देता, पर सजा यह है तो नजर रखा तेरे ऊपर, तो गलत काम ना करें। कुछ वक्त के बाद राजे ने नोट किया कि वह तो बहुत ही संत बन गया। राजा गया भूमिया को, कहता है महाराज मैंने अपना गुरु बना लो, नहीं नहीं मैं गुरु बनाने के काबिल नहीं हाँ, नहीं तुम इन्ने गुण हैं तेरे विच, ठीक है फिर एक गल है, तू फिर धर्मशाल बना अच्छे चंगे काम कर, नाम जपाओ, सो उत्थे एक धर्मशाल बनी जिसे गुरु नानक का नाम जपया गया, और गुरु साहब ने कहा तू दया करी तब धर्म आएगा तेरे को, क्योंकि दया दे कोई धर्म नहीं आ सकता। सो गुरु साहब ने जो सिखाया उस शिक्षा संपन्न ये जरा भूमिया चोर सी दयावान बन गया, और देख के राजे ने उसने अपने जैसे उस सलाहकार समझ रखता। सो गुरु महाराज की सिक्ख्या के मुताबिक अच्छे गुण करने हैं नसीब दयावान बनना है, तथा तक ही बस सकते हैं। तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला। गुरु साहब कह रहे हैं कि प्रभु असी नीच हाँ, असी निर्गुण हाँ, तू सुखदान वाला है, तू सुख देने वाला है, अपने बच्चों की रक्षा कर। तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला। ये प्रभु तो अपने बच्चों की रक्षा कर। इस जगह से गुरु साहब टोटल सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं प्रभु नू कि प्रभु तू ही सब कुछ है, जे कुछ नहीं है तेरे सामने। सो गुरु साहब कह रहे हैं कि तू सर्व कला संपन्न है, तेरे सब गुण तेरे बिच हैं, सब तो ऊंचा तू ही है। तुम निधान अटल सुल्तान, प्रभु तू निधान है। निधान का मतलब है खजाना, दुनिया भर का खजाना तेरे बिच है। तुम निधान अटल सुल्तान, अटल सुल्तान, अटल है जरा बदलता नहीं, तो सुल्तान जरा सम्राट है। ए प्रभु तू सर्व कला समृत है, तू निधान है, गुणा का पर्याय है, तेरे को सब खजाना है दुनिया भर का, तू अटल है, सुल्तान है। तेरा जे सल्तनत है कभी बदलेगी नहीं, दुनिया भी राजा ने सुल्तनत बदल जाती है, खत्म हो जाती है, पर तू तेरी सल्तनत जड़ी है इतें भी है तो उत्थे भी है, वो बदलने वाली नहीं है। तू निधान है, अटल सुल्तान, जिए जंत सब जाचे। पर असि लोग तेरे जाचे हैं, तेरे मतलब जाचे का तेरे अगे हाथ जोड़ वाले, तेरे मंगण वाले तेरे को। जिए जंत सब जाचे, कौ नानक मे हवाला, राख संतन के पाचे। गुरु साहब कह रहे हैं इस मेरा हाल, यही हाल है मेरा, जिस दवे हवा है अब गुणे आ रहा, यही हवाला है मेरा, राख संतन के पाछे। प्रभु संतां दे पिछे पिछे चला, ताकि असी संतां दी सेवा करके लोग शिक्षा ग्रहण करके अगे बढ़ सकिए। कौन आनक हमें हवाला, राख संतन के पाछे। सो इस तरीके दे नाल गुरु साहब सानू दस रहे हैं कि किस तरह असीब संतां दे पिछे लग के आत्मसमर्पण करके मुक्ति प्राप्त करनी है। इस जगह ते एक होर छोटी जिही साखी है गुरु नानक देव जी दे जीवन काल दी। अपने उदासियां दौरान एक बारी गुरु साहब वापस गए तलवंडी, उत्थे भी अपना समागम शुरू हो गया, नाम जपना शुरू हो गया। उससे 10 साल का बच्चा आता सी, रोज सवेरे सवेरे सवा पहर रात रहे, सवा पहर रात रहे पहुंच जाता सी और पीछे बैठता सी और उनका नाम सिमरन सुनता सी, कीर्तन सुनता सी, उसके पास सेवा करता सी, घर वापस चला जाता सी। तो लोगों ने पूछा ये बच्चा कौन है, तो अगले दिन गुरु साहब ने उन्होंने रोक लिया बच्चे ने, कि तू कौन है। कहते जी मैं इतों 10 मील दूर गांव है, उतों मैं आना कीर्तन सुनाना थोड़ा, तेरे तो खेडन का वक्त है, 10 साल का सौन का वक्त है तेरा, इतने कीर्तन सुन किस तरह आ जाना है। कहते जी मैं मौत को डर लगता है, मौत को डर लगता है। 10 साल का बच्चा कह रहा है कि मौत को डर लगता है, वो किस। कहते जी एक बार मेरी माँ ने कहा कि तुसी अपने पड़ोसी को अग ले आओ, पहले अग रखते सी ना राख के बिच छुपा के, अग लैके आते सी अपने चूल्हा बालते सी, अग ले आया चूल्हा बालते, मैं आटा गुन्नी हाँ फिर रोटियां बना दा रही, मैं अग ले आया तो अग बालने की कोशिश की, अग ना बाले। माँ ने आटा गुन लिया, कहती बेटा तू की कर रहे हैं, कहीं अग जला रहे हैं। नहीं बेटा ये तो बड़ी बड़ी अगर लकड़ा लकड़ा पा रहा, छोटिया छोटिया तिनके तिनके पा, अग जल्दी बताएगी। तो कहते मैं उत्थों सीखिया कि यह तो ठीक है, मेरे बाबे की मृत्यु मेरे सामने हुई सी, लेकिन इतने तो छोटे छोटे तिनके जला के पहले जले फिर वड्डा वड्डी लकड़ी जली, तो मैं ये मेरे मन च पै गया कि मैं भी मौत जल्दी आ सकती। गुरु साहब ने एक तरह ना किया, कहता मेरा नाम है तारू। कहता ये बेटा तू अपने खुद खुद भी तारण वाला है तो सारे अपने कुल में भी तारेगा। तो ऐसे तारू पोपट है, बड़ा मशहूर बच्चा होया एक ए बाबा बुढ़ा जी दाम तो पहले आया से। सो इस तरीके से आज गुरु साहब जीवन में जो कुछ और प्रसंग सुनाए हैं मैं दसन दे वास्ते किस तरीके दे नाल प्रभु है महान। इस शब्द के द्वारा सानू दो गुण सिखा रहे हैं प्रभु, एक तो है निम्रता, दूसरी है होमे का त्याग। असी जगह जगह से कह रहे हैं कि असी पापी हाँ दोषी हाँ, ये मनना ही काफ़ी है। ये अहंकार नजना है, ये अहंकार नजन की पहली स्टेज है, मुक्ति प्राप्त करने की पहली स्टेज है अहंकार नजना। दूसरी है संतन के पाछ, संतान के पिछे लग के, कुछ संतान के अगे नहीं जा रहे, संतान के पिछे लग के संतान की शिक्षा ग्रहण करके मुक्ति प्राप्त करनी है। इस तरीके से नाल इस शब्द का थोड़ा बहुत व्याख्यान होया है जी। फुल चुक जी माफी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।